फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इसी से आगे और फरमा दिया, सा मसलन इल कौम अल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, तुम ये हकायात इनको सुनाते ही रहो। यानी अल्लाह बिल्कुल शर्मसार नहीं है कि ऐसी मिसालों को ओवरलुक कर दो, ना सुनो, किसी को ना बताना, क्यों ना बताना, बताओ क्यों, ताकि ये कुछ फिक्र करें। बुरी ही मिसाल ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और वो अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे, जिससे अल्लाह हिदायत बख्शे वही राह रास पाता है, और जिसको अल्लाह ताला अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम व नामुराद रहता है। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं कि जिनको हमने जहन्नम के लिए पैदा किया। दुआ कीजिए अल्लाह हमें उनमें ना करें, जिनको आप कहना चाहिए कि दे आर मैनुफैक्चर्ड फॉर हेल, उनके अंदर तबीयत में, रुझान में, मैलान में, आदात में बुराई होती है, उनको अच्छी चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग कौन से हैं कि जिनको हिदायत मिलती ही नहीं, और ये ऐसे लोगों के साथ है। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युद्फा उलाइका हुमुल खासिरून, जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे वही राह रास पाता है, और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही ना मुराद है। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम के लिए पैदा किया है, इनके पास दिल और दिमाग है मगर वो इससे सोचते नहीं। इमेजिन कीजिए, दिल और दिमाग मौजूद और इंसान उससे सोच नहीं, इनके पास आंखें हैं मगर वो इससे देखते नहीं, इनके पास कान है मगर वो सुनते नहीं। देखिए अजान सुनते तो सब है, अल्लाह क्यों कह रहे नहीं सुनते। मसलन अजान हुई, एक गधे के कान में आवाज पड़ी, उसको भी आवाज आई, एक इंसान के भी आई, फर्क कहां पड़ेगा उस अजान के सुनने के बाद दोनों के अमल से। इंसान उस अजान पे मस्जिद में चल पड़ेगा, गधे के लिए ये वो बात नहीं है। यहां यही बात कह दी कि जो लोग अपनी सेंसेस को इस्तेमाल नहीं करते फिर वो जानवरों के दर्जे पे आ जाते हैं, और इसी तरह से फिर ऐसे लोग इन चीजों का सही इस्तेमाल नहीं करते, वो जानवरों की तरह है बल्कि इनसे भी ज्यादा गए गुजरे, ये वो लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए। देखिए इंसान बन के जीना है। आगे हम पढ़ेंगे सूरत 3 में, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तक्वीम सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन। तो इंसान जब अल्लाह का नहीं बनता ना तो वो जानवरों के दर्जे पे रहता है, जानवर भी नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहिक है, इसको अच्छे ही नामों से पुकारो। अब बताया जा रहा है कि अपना ताल्लुक बिल्लाह कैसे मजबूत करो, लोगों को अल्लाह से जोड़ दो, कैसे, उसके प्यारे नामों से पुकारो, और इन लोगों को छोड़ दो जिसके नाम रखने में सीधे रास्ते से मुड़ जाते हैं, जो कुछ वो करते हैं इसका बदला वो पाकर रहेंगे। हमारी मखलूक में गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के मुताबिक हिदायत और हक के मुताबिक इंसाफ करता है, रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, तो हम इनको बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको ढील दे रहा हूँ। नोट कीजिए, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत ले रहे हैं, मैं इनको ढील दे रहा हूँ और मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। क्या बताया अल्लाह ताला ने, ये बता दिया कि अल्लाह को उसके नामों से पुकारो, अल्लाह से आखिरत भी मांगो, जागो और जगाओ। अल्लाह हमें रो में शामिल कर दे जो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं, लेकिन हमारा हाल यह कि या वदूद पढ़कर भी मोहब्बत दुनिया वालों में से किसी की मांगते हैं, ये नहीं कहते कि वदूद तो मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। आप देखिए कोई हमारा नाम लेकर पुकारे तो हमें अच्छा लगता है ना, अल्लाह सुबहान तआला को जब उसके नामों से पुकारते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है। इसीलिए बगली आयतों में फरमाया मां भी साहेब मिन जिन्ना, और क्या इन लोगों ने कभी सोचा कि इनके रफीक पर जुनून का कोई असर नहीं। मक्का वाले अल्लाह के नबी पर जो इल्जाम लगाते थे कि नबिल्ला ये जुनूनी हो गए, उसी का जवाब है कि क्या अल्लाह के नबी से ये जो कलाम सुनते हो ये किसी जुनूनी और क्रेजी से सुन सकते हो। इतनी प्यारी अकल की बातें कभी कोई जुनूनी क्रेजी पागल शख्स कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। फिर वो कौन है, इन हुआ इल्ला नजीर मुबीन, वो तो एक खबरदार करने वाला है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ आगाह कर देता है। क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन के निजाम पर कभी गौर नहीं किया, और किसी चीज को भी जो अल्लाह ने पैदा की आंखें खोलकर नहीं देखा, और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत जिंदगी पूरी होने का वक्त आ लगा हो। हाईलाइट कीजिए, क्या मुझे और आपको पता है कि मैं भी और जिएंगे। देखिए रिजल्ट्स निकलते हैं, इम्तिहान होते हैं ना, उनकी डेट्स होती हैं। हमारी मौत हमारी एक्सपायरेशन की डेट है। आप एक दूध का डब्बा भी लेते हैं ना, उस पर भी एक्सपायरेशन डेट है। एक योगर्ट की डब्बी लेंगे, एक चॉकलेट लेंगे, एक बिस्किट लेंगे, उस पर भी एक्सपायरेशन डेट लिखी है। खुद से पूछिए मेरी एक्सपायरेशन डेट क्या है। किसी की यूथ में लग जाती है, किसी की ओल्ड एज में होती है, इसलिए फरमाया कि हर लम्हे तैयार हो, और किसी को नहीं पता कि उसकी जिंदगी के महीने बाकी हैं, साल बाकी हैं, दिन या हफ्ते या चंद घंटे, किसी लम्हे कुछ हो सकता है, इसलिए अपना सामान बांध के रखो। फिर आखिर पैगंबर की इस तंबीह के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर वो ईमान लाए, जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे, इसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं, और अल्लाह इन्हें इनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देता है। बस लोग सोचेंगे जब अल्लाह ही नहीं हिदायत दे रहा तो फिर हमें क्यों मिले, अल्लाह भटका रहा है तो हम क्यों भटके, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने किसी को भटकने के लिए नहीं पैदा किया, लोगों के रुझान के मुताबिक अल्लाह उनसे मामला करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे कि आप अपने बच्चे को खिलाना चाहें और वो मुंह ही ना खोले खाने के लिए, तो एक वक्त आएगा कि आप थक जाएंगे, फिर आप उसको छोड़ देंगे उसके हाल पे। अल्लाह हम सबको हिदायत देना चाहता है, अल्लाह हम सब से इस्लाम चाहता है, अल्लाह हम सब से कुरान की मोहब्बत चाहता है। जो लेता है, कोशिश करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, और इसके बरक्स जो नहीं चाहते, फिर अल्लाह तआला कहते हैं इनको मैं इनके हाल पे छोड़ता हूँ। क्यों? ला इकराह फी दीन, दीन पे जबर नहीं है। इसलिए मैं और आप जब तक दिल की गहराई से फुली कन्विंस्ड होके अल्लाह से रो धो के हिदायत नहीं मांगेंगे, हिदायत नहीं मिलेगी। मिल भी जाती है ना तो उसका सिरा खुलता रहता है, बार बार हमारे हाथ से छूटता है। जैसे कभी आप देखें कि वाईफाई सिग्नल स्पार्क करता है ना, कभी सिग्नल जाते हैं कभी जाते हैं, हम कहते हैं सिग्नल्स वीक है। आप इस सिग्नल को लीजिए अपने ईमान पे, आपका ईमान मजबूत है, आपका गुड कनेक्शन है, इंशाल्लाह आप कभी नहीं भटकेंगे। भटकने लगेंगे उससे पहले अल्लाह आपको बचा लेगा। लेकिन अगर ईमान के वाईफाई के सिग्नल इतने कमजोर हैं तो फिर हर वक्त फ्लक्चुएशन ही होती रहेगी, और फिर हम कभी डाउट्स में, कभी ईमान पे, कभी आगे, अमल के वक्त में हम ढीले, इल्म के वक्त में हम आगे, तो ये आंख में जली फिर एक वक्त आता है कि ईमान के बल्ब को फ्यूज भी कर देती है, और अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। वो लोग जो क्यामत की तारीफ नहीं करते थे, वो सवाल बहुत पूछते थे कि क्यामत कब आएगी, उनको जवाब दिया गया। ये लोग आपसे पूछते हैं आखिर वो क्यामत की घड़ी कब नाजिल होगी, कहो इसका इल्म मेरे रब ही के पास है, इसे अपने वक्त पर वही जाहिर करेगा, आसमान और जमीन वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगी। ये लोग इससे मुतालिक तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया कि तुम इसकी खोज में लगे हुए हो, कहो इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से ना वाकिफ है, तो लिहाजा क्यामत पहले से नहीं आएगी। 2012 में ये उम्र थी कि अब इसके आगे कैलेंडर खत्म हो गए, तो ईमान का तकाजा ये कि ऐसी चीजों को डिनाई करते हैं, आनी होगी आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, क्योंकि नबी तक को अल्लाह ने नहीं बताया तो आज मेरे और आपके गैजेट्स को अल्लाह ताला कैसे बता सकते हैं। बस तैयारी करो, जो काम करना है वो कर लो, इसके बाद अल्लाह ताला पे बात को छोड़ दो। फरमाया आसमान और जमीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। ये लोग इसके मुतल्लिक तुमसे ऐसे पूछते हैं जैसे तुम इसकी खोज में लगे हुए हो, कहो इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से ना वाकिफ हैं। ऐ नबी इनसे कहिए मैं अपनी जात के लिए किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। देखिए कितना क्लियर अकीदा किया जा रहा है कि अल्लाह के नबी भी किसी को अल्लाह के हुक्म के बगैर ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान, अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो बहुत से फायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान ना होता। जब सीरत पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि अल्लाह के नबी को इतने बड़े बड़े सदमे लाहक हुए, लोगों ने खाने में जहर मिला दिया, आपको पता भी नहीं चला। तो अगर आप गैब जानते तो क्या आप जहर मिला हुआ खाना खाते? एक महीने तक आपकी बीवी पे तोहमत लगी रही और आप एक जहनी इजतराब का शिकार रहे, अगर आप गैब जानते तो क्या आप हजरत आयशा को इस तरह से उनके बारे में फील करते? तो याद रखिए कि नबियों को गैब नहीं पता होते जब तक जितना अल्लाह न दे उसके अलावा वो कभी किसी बात को नहीं जानते। फिर फरमाई नाना इल्ला नसीरुं व बशीरुं लिकौमी युमिनून, मैं तो महज एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ इन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। फायदा उसको होता है जो बात मानने की नीयत से सुनता है, इसलिए सुनने की नीयत से सुनेंगे तो अल्लाह के नबी की इस खुशखबरी के मुस्तहिक होंगे। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी की जिन से इसका जोड़ा बनाया। क्यों बनाया? लियस्कुना इलैहा, ताकि इसके पास सुकून हासिल करे। हाईलाइट कीजिए, और जो मैरिड सिस्टर्स हैं उनके लिए इसमें एक बहुत बड़ी तंबीह है कि बीवी का मतलब सुकून देने वाली चीज। यहां भी पढ़ेंगे, सूरत रूम में भी आएगा ये मौजू, लेकिन जहां भी बात आती है ना तो मर्द के लिए औरत में सुकून है। आज वेस्ट में जब बीवी ने सुकून ना दिया तो मर्द बेचैन हुए, शराब के नशे में धुत हुए, वही सुकून गर्लफ्रेंड से लेना चाहा तो ना मिल सका, और इसी तरह इधर उधर मुंह फेरा तो पीछे हो गया। तो लिहाजा निकाह का रिश्ता सुकून देता है। आप देखिए कि बीवी जब वो जमीन की तरह किसान अपना बीज डालता है ना, शोहर भी बच्चे पैदा होने के लिए औरत को अपना बीज देता है। जब जमीन बंजर होती है तो फिर अच्छी फसलें नहीं उगती, آج ویسٹ کی بے چینیوں اور پریشانیوں کی بہت بڑی وجہ یہ کہ وہاں بیویاں سکون کا ذریعہ نہیں رہیں، اور بیوی کو آپ صرف بیوی بنا کے رکھیں گے انشاءاللہ وہ آج بھی سکون دینے کو تیار ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک دوسرا مرد بنا کے بیوی کو بیوی بنا کے رکھیں گے آج بھی بیوی سکون دینے کو تیار ہے، لیکن جس بیوی کو آپ ایک مرد بنا کے اس کے اوپر باہر کی ذمہ داری بھی ڈال دیتے ہیں پھر وہ سکون نہیں دیتی. پھر اس کے بعد فطری طریقے کی طرف بات ہوئی، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل ٹھہر گیا جس سے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر پھر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی مدد پر قادر ہیں. دیکھیے کتنا بڑا فیکٹ اللہ نے بیان کیا. جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو میاں بیوی دونوں بہت ہمبل ہوتے ہیں. اللہ بچہ ہو، ٹھیک ہو، ہیلدی ہو، پریشان نہ ہو، کچھ نہ ہو. جو ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بعض لوگ شرک کیسا کرتے ہیں، پیران دیتا، مولا بخش، مولا بخش تو کمی کہتے ہیں، نبی بخش، غلام نبی، کچھ اس طرح کے نام رکھتے ہیں. بعض کچھ قبر والوں کی طرف ان کو جوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں قبر والوں کی دین سے ہوا. اسی طرح دوسرا بچوں کی شراکت کیا ہے کہ ان بچوں کی تربیت اللہ کے حکموں کے خلاف کرنے لگ، کبھی کچھ، کبھی بیبی شاور کے نام پہ کوئی رسم اپنا لی، کبھی اس بچے کو کہیں اور ایسے پالنا شروع کر دی کہ جیسے نہیں ہونا چاہیے. تو کیا پتہ چلا کہ جب کوئی نعمت مانگے اور وہ نعمت مل جائے تو پھر ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے وہ تمام لوگ ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی تمام باتوں سے بے نیاز ہوں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہیں اپنی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو ان تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ ان کو پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. دیکھیں کتنا کلیئر فیکٹ ہے. قبر میں سوئے مرے شخص کو آپ پکاریں، اللہ کہتے ہیں وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں. تم ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پکڑتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھے؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنے؟ کیا ان آیتوں کا ترجمہ ہمیں ان قبروں پہ نہیں لگانا چاہیے جہاں جا کر لوگ پیروں سے مانگتے، بزرگوں سے مانگتے؟ دیکھیے اسلام شرک کا کلا کما کرنے کے لیے آیا تھا. آج افسوس ہے کہ وہی امت مسلمہ جس نے اللہ سے بڑی محنتوں اور منتوں کے ساتھ قربانیوں کے بعد زمین کا ٹکڑا لیا، آج وہاں شہر شہر، گلی گلی، محلہ محلہ ایسی قبریں آپ کو دکھیں گی جہاں جا کر لوگ کام کریں گے، اور آپ جا کے ان کو کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ مائنڈ کریں گے، کہیں گے نہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس بزرگ کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ کوئی سو رہا ہو تو ہم اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں؟ آپ سو رہے اور کوئی آپ کو بار بار آ کے کہ چابی کدھر ہے، کھانا کدھر ہے، تو آپ غصہ کریں گے؟ بالفرض محال ان کے خیال کے مطابق ان کے پیر اور بزرگ قبروں میں جانے کے باوجود سب سن رہے ہیں تو آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ کچھ کر سکتے تو قبر کی مٹی ہٹا کے تو اوپر سے باہر آ جاتے. لوگوں نے ان کو کفن دیا، ان کا منہ بند کیا، ان پہ بیری کے پتوں سے غسل دیا، ان کے کفن کے بند اتنے زور سے باندھے، ان کے ناک میں روئی دی، کچھ نہ کر سکے. چار لوگ کندھوں پہ اٹھا کر ان کو جا کر لے گئے، کوئی کچھ نہ کیا. قبر میں ڈالنے تک کچھ نہ کر سکے، مٹی ڈالنے تک کچھ نہ کر سکے. یہ مٹی کے اندر جاتی وہ کرنی والے کیسے ہوگے؟ سوچنے کی بات ہے. شرک انسان کی عقل مار دیتا ہے، اس لیے شرک کو مٹانا آج ہم سب کا مشن ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اے نبی ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے،